academic. He's a political commentator as well, and he writes widely on these issues that we are interested in today. We have with us Mr. Ajay Singh, who is the editor of Governance Now, and he was a young journalist at that time with the Times of India in the late 80s, and he's travelled extensively through Uttar Pradesh and what is now Uttarakhand, and he's covered these incidents of state violence quite extensively. And finally, of course, we have with us Advocate Rebecca John, who's a designated senior counsel in the High Court and is the first woman lawyer to be designated as senior. And she has been fighting for the Hartlepura victims for the past 30 years, and she will be discussing with us what went on in the courtroom as well. So I would like to invite first Mr. V.N. Rai.
दोस्तों हाशिमपुरा को मैं कई तरह से याद करता हूँ. जैसा अभी मेरे इंट्रोडक्शन में कहा गया कि इतफाक से मैं उस जिले का एसपी था जहाँ पर ये घटनाएं घटी थी. घटनाएं तो अपराध को शुरू हुआ था मेरठ से के हाशिमपुरा मोहल्ले से उन्हें उठाया गया था और ला के गाजियाबाद में दो जगहों पर मारा गया था. तो टेक्निकली अगर आप लीगल टर्म में देखें तो FIR मेरठ में भी दर्ज हो सकती थी, तो मेरठ से शुरुआत हुई थी, और गाजियाबाद में भी दर्ज हो सकती थी, वो क्राइम वहाँ पे आके ख़त्म हुआ था. तो लेकिन वो मैं वहाँ पे एसपी था और डेढ़ घंटे बाद ही मुझे पता चल गया जो दूसरा प्लेस ऑफ ऑफरेंस था मुरादनगर, ये मकनपुर, वहाँ करीब ये 9:15 बजे हुई और 10:30 बजे तक मुझे पता चल गया. तो लगभग 11:15-11 बजे तक मैं मेरे डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट और जितने पुलिस ऑफिसर्स और मजिस्ट्रेट्स थे हम लोग 1.5-2 घंटे के अंदर वहाँ पहुँच गए थे. और पहला सर्वाइवर बाबूदीन हमको वहाँ मिला था. बाबूदीन से हमको पूरा पता चला क्या क्या हुआ था. तो मैं हाशिमपुरा को तीन तरह से देखता हूँ. एक तो एज ए पुलिस ऑफिसर, क्योंकि एक जैसा अभी इंट्रोडक्शन में भी कहा गया और ये टर्म मैंने ही पहली बार शुरू किया, क्योंकि मैं सबसे पहले रियलाइज़ कर पाया कि आज़ादी के बाद की सबसे बड़ी कस्टोडियल किलिंग थी. अब तो आप देख रहे हैं मीडिया में बाहर जगह सबसे बड़ी कस्टोडियल किलिंग के रूप में इसको चिन्हित किया जा रहा है. तो इसके पहले जितनी भी इस तरह की घटनाएं हुई थी जिसमें पुलिस की प्रेजेंस में बहुत सारे लोग मारे गए, जैसे 84 का आप यहाँ से राइट देख लें, नेल्ली देख लें, बाबरी मस्जिद का डिमोलिशन देख लें, इन सब में फ़र्क सिर्फ ये था हाशिमपुरा से कि इनमें कहीं भी कस्टोडियल किलिंग नहीं हुई थी. पुलिस के इंडिफरेंस की वजह से, पुलिस के कॉम्प्लिसिट बिहेवियर की वजह से, पुलिस की नालायकी की वजह से ये सारी चीज़ें पुलिस की प्रेजेंस में हुई थी. लेकिन ये तो एक तरह से एकदम ही यूनिक किस्म की घटना थी और मेरे लिए एक प्रोफेशनल पुलिस ऑफिसर के लिए ये बहुत शॉकिंग और चिंताजनक थी, क्योंकि मेरे अपने बेड़े का सवाल था. मुझे लग रहा था कि मेरा बेड़ा डूब रहा है, तो इसलिए मैं उस तरह से इन्वॉल्व था. दूसरा, इसमें मैं एक लेखक की तरह इन्वॉल्व हुआ, क्योंकि मुझे 2-3 साल के अंदर लगा कि इस पर मैं कभी कुछ लिखूंगा, और मैंने मटेरियल कलेक्ट करना शुरू किया, खासतौर से उन लोगों ने जिन्होंने ये घटना की थी. इस पूरी टुकड़ी का जो सीनियर मोस्ट ऑफिसर था सुरेंद्र पाल सिंह, प्लेटून कमांडर, उससे खासतौर से मेरी घंटों घंटों बात हुई, और मैं उस मानसिकता को समझना चाहता था कैसे आप बिना किसी दुश्मनी के किसी ह्यूमन लाइफ को लेना या कत्ल करना अपने आप में बड़ा मुश्किल काम होता है. आपके पास तो बड़ा स्ट्रांग रीज़न होना चाहिए, है ना, कोई नफरत या गुस्सा या लालच, कुछ इतना बड़ा कारण होना चाहिए जिससे आप किसी की जान ले सकें. तो मैं ये समझने की कोशिश कर रहा था कि ये 15-20 लड़के जो इसमें शरीक थे सब 40-45 साल का, सबसे बड़ा शायद यही सुरेंद्र पाल सिंह था, तो आखिर कैसे इन्होंने किया होगा. एक लेखक के तौर पर मैं इसे समझने की कोशिश कर रहा था. और तीसरा जो ज़्यादा महत्वपूर्ण कारण था, और जो अब वो नतीजा आने के बाद, कोर्ट का जजमेंट आने के बाद, जो मुझे लगता है एक हिंदुस्तान के एक ऐसे शहरी की हैसियत से जो अपने देश को प्यार करता है, जिसको ये लगता है कि ये देश तभी आगे बढ़ सकता है, तभी प्रॉस्पर कर सकता है, ये देश तभी तरक्की कर सकता है जब तक ये एक सेकुलर और डेमोक्रेटिक पॉलिटी यहाँ बनी रहे, एक हम सेकुलर सोसाइटी बनाए रखें. और इसका मैं समझता हूँ कि सभी यहाँ पर स्टूडेंट्स हैं और टीचर्स हैं, ये बहुत एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है. आपने देखा होगा 1947 में टू नेशन थ्योरी के आधार पर देश बटा, हमारे पड़ोस में एक देश बना जो रिलीजन के आधार पर बना, और वो 25 साल में एक नहीं रह पाया. आपने देखा होगा कि 25 साल के अंदर वो देश टूट गया, और आज भी अगर बाहरी ताकतें उसको बचाए ना रखे होती तो अभी और दो तीन टुकड़ों में बढ़ जाता। हम इतने सालों से चलते आए और 1947 के बाद से अगर आप छोटा सा एक ऑपरेशन लें 62 का, तो एक इंच जमीन हमारी कहीं नहीं गई, बल्कि सिक्किम जैसा एक स्टेट हमारे साथ जुड़ गया। तो मुझे हमेशा ये लगता है कि ये शायद सेकुलरिज्म का ये सबसे बड़ा चमत्कार था जो इस देश को जोड़े रखे रहा। और इस फैसले के बाद मैं ये जो तीसरा मेरा इंटरेस्ट था ये और ज़्यादा मजबूत हुआ। खासतौर से मैं तीसरे पर पहले इसलिए आ रहा हूँ क्योंकि ये आपको फैसला भी आ चुका है और डिटेल्स भी आप सब इतनी अखबारों में और मीडिया में इतना कुछ आ चुका है कि मुझे नहीं लगता है कि माइन्यूट डिटेल्स में जाने की ज़रूरत है। तीसरा इसलिए ज़्यादा महत्वपूर्ण लगता है, मैं एक छोटा सा उदाहरण आपको दे सकता हूँ। आप शायद अखबारों में देख रहे होंगे कि अलग अलग शहरों में जा करके हम लोग इसके बारे में एक खास तरह की अवेयरनेस पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं। मैं खुद लगभग 5-6 शहरों में जा चुका हूँ, अगले हफ्ते में 2-3 शहरों में और जाऊँगा। छोटे छोटे कार्यक्रम हम कर रहे हैं और कोशिश ये कर रहे हैं कि लोगों को ये एहसास हो सके कि ये कितनी भयानक घटना थी और इसको इस तरह से चुपचाप खामोशी के साथ, पुलिस में एक शब्द इस्तेमाल होता है बस्ता खामोशी, तो इसे बस्ता खामोशी में हम दफन ना होने दें। अभी लखनऊ गया था मैं, 4-5 दिन पहले का वाक्य बता रहा हूँ। वहाँ पर 2 मकाले पढ़े गए, 2 लेख पढ़े गए, क्योंकि एक साहब बहुत बुजुर्ग साहसी थे वहाँ के, जो वहाँ आ नहीं सकते थे, बीमार थे उनका था, और एक साथ जो कंपेरेटिवली यंग थे उन्होंने हमारी प्रेजेंस में पढ़ा। आप ये सोच सकते हैं कि मेरे जैसा आदमी उन लेखों को सुन करके दहशत में पड़ गया। मुझे लगा कि ये मैं क्या सुन रहा हूँ, मतलब हिंदुस्तान में 2015 में इस तरह का लेख सुनने, इस तरह का एक मकाला सुनने का मौका मिल रहा है, मैं इसकी कल्पना नहीं कर सकता। जैसे जो बुजुर्ग साहसी थे उन्होंने अपने लेख में, ये लंबा लेख था उसे बयान नहीं किया जा सकता, उन्होंने ये कहा था कि देखिए सिखों में तो एक बड़ा ज़बरदस्त बलबला था और बड़ा जोश था, और एक सिख ने, बेंज सिंह ने इंदिरा गांधी को मार दिया। मुसलमानों में ऐसे मर्द आदम क्यों नहीं पैदा हुए जो राजीव गांधी और वीर बहादुर को मार सकते और अल्लाह उनको जन्नत बख्शता, इस तरह की चीज़ें वो पढ़ रहे थे। अच्छी बात ये हुई कि वहाँ जो मुसलमान पैनलिस्ट थे मेरे साथ उन सब ने प्रोटेस्ट किया, मुझे प्रोटेस्ट करने की ज़रूरत नहीं पड़ी, और सब ने कहा कि बहुत गंदा मकाला है, बहुत ख़राब बात कही जा रही है और ये यहाँ नहीं पढ़ा जाना चाहिए। लेकिन मैं जो आपको कह रहा था कि हाशिमपुरा का जो तीसरा मेरा कंसर्न है वो यही था, क्योंकि ये एक बहुत स्वाभाविक सा मैसेज जा रहा है। अगर ये मैसेज चला जाए, और ये मैसेज जाहिर है कि मुसलमानों की जो यंगर जनरेशन है उसको ये बहुत आसानी से अपील कर सकती है कि इंडियन स्टेट अब आपको जस्टिस नहीं दे सकता, इंडियन स्टेट के सारे स्टेक होल्डर फेल हो गए और ये आपको जस्टिस नहीं दे सकते, तो लिहाजा हम अब एक ही तरीका रह गया कि हम जिहाद करें, हम हथियार उठा लें। दुनिया भर में आप देख रहे हैं कि आपके जिहाद के लिए रिक्रूट करने वाले घूम रहे हैं और उनको बहुत आसानी से वॉलंटियर्स मिल सकते हैं। अगर एक बार ये मैसेज चला जाए कि साहब इंडियन स्टेट अपनी माइनॉरिटीज़ के साथ जस्टिस नहीं कर सकता, तो ये तीसरा एंगल था जिससे मैं हाशिमपुरा में इन्वॉल्व हुआ। मैं एक एक करके, चूँकि और अच्छे पैनलिस्ट यहाँ बैठे हुए हैं वो इसके दूसरे पक्षों पे आपको बताएंगे, मैं एक एक करके तीनों के बारे में थोड़े से शब्दों में अपने विचार रखूँगा। पहला तो एक पुलिस ऑफिसर के तौर पर था। देखिए ये पूरी दुनिया में एक इंटरनेशनल लॉ है और ये कोई सिविलियंस के लिए नहीं, प्रिजनर ऑफ वॉर तक के लिए एक लॉ है। मेरे साथ अलवी साहब बीएसएफ में रहे हैं, हम लोग कश्मीर में साथ साथ रहे हैं। अगर हम दुश्मन को पकड़ते हैं और उसे प्रिजनर ऑफ वॉर भी बना लेते हैं तब भी उसका जो राइट है, उसके जो ह्यूमन राइट्स है, खासतौर से जिंदा रहने का अधिकार, उससे आप उसे वंचित नहीं कर सकते, कोई स्टेट उसे डिप्राइव नहीं कर सकता। यहाँ तो हमने अपने सिटीजन को पकड़ा था, अपने नागरिकों को कस्टडी में लिया था और अपने नागरिकों को कस्टडी में ले करके हमने मार दिया था। हाशिमपुरा में ये तो एक छोटी सी, हाशिमपुरा एक उसका वो है, बगल में मलियाना में भी यही हुआ। हाशिमपुरा में उस दिन और भी बहुत सारे लोग पकड़े गए थे और चूंकि मेरठ के जेलों में जगह नहीं थी इसलिए उनमें से बहुतों को फरुखाबाद भेजा गया, फतेहगढ़ सेंट्रल जेल भेजा गया। और आपको जान करके ये हैरानी होगी और तकलीफ होगी कि जब पहली बस पहुंची तो जेल के वार्डरों ने, जेल के जो एम्प्लॉज थे उन्होंने, और जो कैदी थे, कैदियों को पहले से तैयार करके रखा गया था, कैदी तो उनके पास कोई इन्फॉर्मेशन का, कोई फ्लो ऑफ इन्फॉर्मेशन नहीं थी,
उनको तैयार करके मोटिवेट करके रखा गया था और उन्होंने पहली बस पे हमला करके 6 लोगों को मार दिया। उसके लिए अलग से मुकदमा दर्ज हुआ और अलग से CID ने तफ्तीश की और जो हर्ष मलियाना या हाशिमपुरा का हुआ, हाशिमपुरा का तब भी थोड़ा बेहतर हुआ, अदालत तक आया, जो मलियाना का हुआ लगभग वही हर्ष फतेहगढ़ का हुआ। तो ये एक बहुत ही बुरी बात थी जो इंडियन स्टेट कर रही थी। आपने कस्टडी में लिया लोगों को और उसके बाद आपने मार दिया। पुलिस खड़ी रही इस इलाके में भी, 84 में बहुत कुछ हुआ है, आप में से बहुत सारे लोगों को याद होगा कि यहाँ सिख मारे गए थे, लेकिन उसमें ऐसा कोई केस हमको नहीं मिलता जिसमें सिखों को पकड़ के लाया गया और पुलिस ने ले जाके मार दिया। तो ये तो एक वर्स्ट फॉर्म ऑफ ह्यूमन किलिंग थी, ये हाशिमपुरा में हुई। इसके बाद जो जब मैं इसमें लेखक के तौर पर इन्वॉल्व हुआ और मैंने किताब पर काम करना शुरू किया, तब तो मैं थोड़ी देर के लिए भौचक्का रह गया। मैंने देखा इंडियन स्टेट के जितने स्टेक होल्डर्स थे उनमें कोई सीरियसली नहीं ले रहा था इस घटना को कि ये इतनी बड़ी घटना है। मैं 2-3 स्टेक होल्डर्स के बारे में बता सकता हूँ। जैसे मीडिया आप लीजिए, आपको ये जान के ताज्जुब होगा कि 22/23 की रात में घटना हुई, गाजियाबाद में हुई, 23 और 24 को दिन भर हम लोग डेड बॉडीज निकाल निकाल करके मॉर्चरी में ले जाते रहे, मॉर्चरी शहर के अंदर थी। उस समय नोएडा भी गाजियाबाद का हिस्सा था, नोएडा भी कोई अलग जिला नहीं बना था और गाजियाबाद सबसे ज़्यादा रेवेन्यू देने वाला शहर था। अजय सिंह जी बेहतर जानते हैं कि अखबारों के लिए रेवेन्यू कितना महत्वपूर्ण होता है। दिल्ली के सारे अखबारों के दफ्तर गाजियाबाद में थे, या तो ब्यूरो थे या उनके अपने इम्पोर्टेंट जर्नलिस्ट वहाँ उनको कवर कर रहे थे। लेकिन 23 तारीख की सुबह से लेकर के 29 तारीख तक किसी अखबार में कोई खबर नहीं आई। एक खबर अमर उजाला में आई, जब मैं किताब में काम कर रहा था तो मैंने अमर उजाला की फाइलें निकाली, बड़ी दिलचस्प खबर थी। मकनपुर गांव जहां पर कि दूसरा प्लेस ऑफ ऑकरेंस था, ये वो जगह है जो आप लोगों में से गाजियाबाद जाते होंगे तो इस समय वहाँ पर वैशाली, कौशाम्बी, ये बहुत सारी घनी आबादी वाले हाई राइज बिल्डिंग्स आपको दिखाई देती। उस जमाने में ये ऊसर था और सो कॉल्ड जंगल, जिसे आप कह सकते हैं जंगल एक ट्रेडिशनल टर्म में नहीं, लेकिन छोटे छोटे दरख्त थे, खासतौर से नहर के किनारे किनारे सरकंडे के दरख्त थे तो उनको जंगल कहते थे। तो दो लोगों को जिनको हम लोगों ने मुरादनगर से निकाल करके मोहन नगर अस्पताल में भर्ती कराया था, उनके बारे में अमर उजाला ने ये रिपोर्ट किया कि साहब दो जख्मी बड़े सस्पेक्ट, बड़े सस्पिशस कंडीशंस में मकनपुर के जंगलों में मिले और पुलिस ने उन्हें छिपा करके मुरादनगर मोहन नगर अस्पताल में भर्ती करा रखा है और किसी से मिलने नहीं दे रहे। यानी जो विक्टिम्स है उनको मशकूक की तरह, उनको सस्पेक्ट की तरह पेश किया गया। जो डेड बॉडीज ले जाई गई जो दिन भर ओपन में जा रही थी, वो कोई किसी तरह की सीक्रेसी नहीं थी। उन डेड बॉडीज के बारे में अमर उजाला ने यह कहा कि साहब कुछ डेड बॉडीज आई हैं, उनको स्टैब वुंड्स हैं, उनको चाकुओं के घाव लगे हुए। आप कल्पना करिए कि किस तरह से अखबार क्या रोल अदा कर रहे थे। इससे आप, मैं अमर उजाला की इसलिए बात कर रहा हूँ कि अमर उजाला और जागरण दो इम्पोर्टेंट अखबार थे जिसमें जागरण की यहाँ पर कोई जिक्र इसलिए नहीं कर रहा हूँ कि जागरण का एक नॉन कम्युनल स्टैंड रहा है। अमर उजाला कंपेरेटिवली बेटर अखबार माना जाता है। जागरण के अगर मैं भी आपको कोटेशन देने लगूंगा तो आप तो यू विल बी शॉक्ड। अमर उजाला के मैं कोटेशन दे रहा हूँ। ये तो मीडिया की बात थी। जब मैंने उसमें एक तरह से नॉन प्रोफेशनल काम किया, जो मेरा काम नहीं था, मुझे जैसे ही एहसास हुआ कि ये तो पूरा दबाने की कोशिश की जा रही है, तो मैंने सबसे पहले नवभारत टाइम्स में खबर प्लांट कराई। आपको जान के ताज्जुब होगा कि 25, 26, 27 तीन दिन तक नवभारत टाइम्स में खबर पड़ी रही और राजेंद्र माथुर जैसा एडिटर, जिसके बारे में जो पत्रकारिता की दुनिया है वो काफ़ी ऊँचे ख्याल रखती है, राजेंद्र माथुर ने इस खबर को छापने से मना कर दिया। फिर चौथी दुनिया नाम का एक छोटा सा अखबार था जिसमें सारे मेरे दोस्त भरे हुए थे, उनसे मैंने बात की तो 29 तारीख को पहली बार ये खबर चौथी दुनिया में छपी और 29 तारीख को पूरी दुनिया को पता चला कि इतनी बड़ी घटना हो गई। तो क्योंकि मैं अपनी किताब में विस्तार से इन सबके बारे में लिख रहा हूँ, लिहाजा मैं विस्तार से नहीं जाऊँगा। तो आप एक जो स्टेक होल्डर, जो सबसे इम्पोर्टेंट स्टेक होल्डर था, जिसका सबसे महत्वपूर्ण रोल रहा, यहाँ तक गुजरात के 2002 के दंगे भी मैं समझता हूँ कि जो सबसे ज़्यादा डिसाइसिव जिन्होंने रोल अदा किया उसको रोकने में, और जिसकी वजह से अटल बिहारी वाजपेयी को ये कहना पड़ा कि अब मैं क्या चेहरा लेकर के दुनिया में जाऊंगा, तो उनके चेहरे पर कालिख किसने पोती थी? उनके चेहरे पर कालिख NDTV ने पोती थी, जो दूसरा इलेक्ट्रॉनिक मीडिया था, जो दूसरे प्रिंट मीडिया थे उन्होंने पोती थी। लेकिन हाशिमपुरा में मीडिया का क्या रोल था, ये मैंने आपको एक छोटा उदाहरण दिया। जो पॉलिटिकल लीडरशिप क्या कर रही थी, 23 तारीख को रात में 3 घंटे मेरठ सर्किट हाउस में मैं और नसीम जैदी, जो आज का इलेक्शन कमिश्नर हैं, वो मेरे DM थे, हम लोग लड़ते रहे। लेकिन हम चीफ मिनिस्टर को ये कन्विंस नहीं कर पाए कि साहब PAC ने अगर बगावत, ये डर था कि PAC बगावत कर देगी अगर उसके खिलाफ कोई एक्शन लिया गया। तो मैंने कहा PAC से सुपीरियर फोर्सेज हैं, फौज है, BSF है, CRP है, हम किसी को तलब कर सकते हैं, कानून हमें अख्तियार देता है, हम तलब करके, और अगर कोई फौज इस तरह की हरकत कर रही है कि इनसबॉर्डिनेशन, इनडिसिप्लिन, और उसके बाद इतना बड़ा काम करने के बाद भी अगर वो बगावत करने को उतारू है, तो उसको कुचल देना चाहिए। एक प्रोफेशनल पुलिस ऑफिसर के हैसियत से मैं तो सिर्फ, मेरा दिमाग इसी में जाता है कि उसे इस तरह से कुचलिए जो दोबारा ऐसी हरकत ना करे। लेकिन 3-4 घंटे के बावजूद हम कन्विंस नहीं कर पाए चीफ मिनिस्टर को, और नतीजा ये रहा कि दूसरे ही दिन वो इन्वेस्टिगेशन मुझसे छीन करके CID को दे दिया गया। अब आप आइए तो तीसरा स्टेक होल्डर जो सबसे इम्पोर्टेंट था, जो रबेका ने देखा होगा क्योंकि ये उसमें पैरवी करती रही हैं, CID की पहले दिन से जो कोशिश थी वो ये थी कि किस तरह से इनको बचाया जाए। मैंने क्योंकि जब मुझे पेंगुइन वालों ने अप्रोच किया और ये कहा कि किताब से आप ही लिख सकते हैं, तो मैंने भी कहा हाँ किताब से मैं ही लिख सकता हूँ, इसलिए नहीं कि मैं कोई बहुत बड़ा तोप, बहुत बड़ी तोप हूँ या बड़ा लेखक हूँ, इसलिए कि उन डॉक्यूमेंट्स तक जिनको इस किताब में लिखने के लिए ज़रूरत होगी वहाँ तक सिर्फ मैं ही पहुँच सकता हूँ, कोई नहीं पहुँच पाएगा। और सचमुच मैं उन डॉक्यूमेंट्स तक पहुँचा, और जब मैं CID के डॉक्यूमेंट्स मैंने पढ़ने शुरू किए आज से 3-4 साल पहले, फैसला तो अब आया है, तो मैंने बल्कि वृंदा से कहा था कि इस तफ्तीश पर तो कोई अदालत सजा नहीं दे सकती, ये डॉक्यूमेंट तो ऐसा लग रहा है जैसे हम सफाई के डॉक्यूमेंट्स पढ़ रहे हैं, डिफेंस के डॉक्यूमेंट्स पढ़ रहे हैं, ये प्रोसिक्यूशन को हेल्प करेंगे, ये मैं 30-35 साल पुलिस में रहने के बाद मैं तो ये नहीं मान सकता। तो पहले दिन से ही जो इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी थी वो भी मदद करने की कोशिश करती रही कि किस तरह इन्हें बचाया जाए। और पॉलिटिकल लीडरशिप का हाल ये था कि पॉलिटिकल लीडरशिप उस समय कांग्रेस की सरकार स्टेट में भी थी, सेंटर में भी थी, 1.5 साल बाद कांग्रेस गायब हो गई उत्तर प्रदेश से, आज तक नहीं आई। उसके बाद से बहुत सारी सरकारें आईं, जिनमें आप BJP की 3 सरकारें या 4 सरकारें उन्हें छोड़ दीजिए, लेकिन जो सेकुलरिज्म की कसमें खाने वाले लोग हैं उनकी सरकारें आईं। मैंने तो जो इन्वेस्टिगेशन था उसका ग्राफ बनाया और मैं देखता गया कि ग्राफ में गिरावट कहाँ कहाँ आ रही, कहाँ कहाँ ठीक चल रहा, कहाँ कहाँ गिरावट आ रही। जो गिरावट का पीरियड है उसमें मैं लखनऊ में कौन सी सरकार थी उससे तुलना करता था, तो मैंने पाया कि लगभग सारी सरकारें, जो एक पार्टी की सरकार तो छोड़ दीजिए क्योंकि उससे हमें उम्मीद नहीं थी, लेकिन बाकी जो BSP और SP की सरकारें थी उनका भी एटीट्यूड ऐसा नहीं था जो लगे कि वो इस केस की सीरियसनेस समझ रहे हैं, या उनको ये एहसास हो रहा है कि अरे ये तो हिंदुस्तान की जो सेकुलर पॉलिटी है, जो सेकुलर फैब्रिक है, उसको नुकसान पहुंचाने वाला सबसे बड़ा मामला हो सकता है, इसमें तो हमें पूरी ताकत से टूट पड़ना चाहिए। किसी को ऐसा एहसास नहीं हुआ। जुडिशरी जो हमारी आखिरी स्टेक होल्डर है उसका हाल आपने देख लिया, 28 साल उन्होंने लगा दिए। 28 साल में DC समन गाजियाबाद, ये इकबाल अंसारी साहब जिंदा थे, वो सुप्रीम कोर्ट में लड़ रहे थे इस मुकदमे के ट्रांसफर के लिए, इत्तेफाक से मेरे उनसे बहुत अच्छे संबंध थे, और जब उनको कोई लीगल, उन्हें ऐसा लगता था कि कोई पुलिस से रिलेटेड कुछ हो तो मेरे साथ बैठते थे और हम लोग घंटों इस के बारे में डिस्कस करते थे कि क्या आर्गूमेंट लेके हम जाएं। इकबाल अंसारी साहब ने जब वो फैक्ट्स रखे तो मैं खुद ही एकदम भौचक्का रह गया कि 20 बार समन गए, 20 बार अवेलेबल वारंट्स गए, 10 बार नॉन अवेलेबल वारंट्स गए, और वो PAC वाले जिनको कि हमारे यहाँ पुलिस में कहा जाता है एट द ड्रॉप ऑफ द हैट हम सस्पेंड करते हैं, सबसे ज़्यादा सस्पेंड करने वाला डिपार्टमेंट है। अभी यहाँ सड़क पर एक सिपाही को ट्रक से पैसा लेते देखे, सबसे पहला काम हुआ सस्पेंड कर दो। जिन्होंने 40-42 लोगों का कत्ल किया था उनके सस्पेंशन में सालों लगे, और सस्पेंशन के बाद उन्हें मुश्किल से कोई 6 महीने सस्पेंड रहा, कोई साल भर सस्पेंड रहा, वो वापस वर्दी पहन के आ गए। ये सारे लोग जो वर्दी पहन के अपनी ड्यूटियाँ दे रहे थे उनको राज्य सरकार के पास जब समन जाते थे तो ये लिख के आ जाता था साहब वो तो दस्तयाब नहीं हो रहे, दे आर नॉट ट्रेसेबल। गवर्नमेंट एम्प्लॉयज जो तनख्वाहें ले रहे थे और पुलिस में नौकरी कर रहे थे उनके बारे में ये कहा जाता था साहब दे आर नॉट ट्रेसेबल। तो आप ये समझ सकते हैं कि कितने सीरियस थे, अदालतें कितनी सीरियस थी, इसका मैं एक ही उदाहरण दे सकता हूँ। इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है मेजर जॉली, मेजर पठानिया, मेजर मैं पहले दिन से कह रहा था सीआईडी वालों से कि देखो ये एक छोटे से सब इंस्पेक्टर का कारनामा नहीं हो सकता। सबसे बड़ा अहदेदार कौन था उस पूरे ग्रुप में? एक सब इंस्पेक्टर था, सबसे बड़ा ऑफिस बेयरर। सब इंस्पेक्टर इतना बड़ा फैसला नहीं कर सकता कि अपने प्लेस ऑफ ड्यूटी से वो 40 लोगों को उठा लाए और 40-50 किलोमीटर दूर ले जाके मार दे, ना तो उसके सबॉर्डिनेट उसका हुक्म मानेंगे। तो इसमें एक तो सीनियर आईपीएस अफसर इन्वॉल्व हैं, सीधी सी बात है, आपको उनको इंट्रोगेट करना चाहिए। दूसरे मैं पहले दिन से कह रहा था इसमें फौज इन्वॉल्व है, और जो चीज़ मैं साफ साफ देख रहा था उसे इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी नहीं देख पा रही थी। ये पूरी जो इसके पीछे घटनाक्रम उसे बताने का वक्त नहीं है, लेकिन मैं इतना कह सकता हूँ इसमें फौज इन्वॉल्व। और मेजर पठानिया जो उस कॉलम का कमांडर था उसको हमारी अदालतें आखिर तक नहीं बुला पाई। पहले ये बताया गया, क्योंकि जब से मुकदमा चल रहा था 3 साल पहले मेरी शहादत हुई, जब मेरी गवाही हुई तो मुझे बताया गया अब तो ये ख़त्म होने वाला है। उसके बाद से तारीखें पढ़ती रही पब्लिक प्रोसिक्यूटर से, जो सर्वाइवर्स हैं उनसे भी पूछता रहा, कहा गया था वो फौज वाले नहीं आ रहे। कौन नहीं आ रहे? तो मेजर पठानिया नहीं आ रहे। क्यों नहीं आ रहे? पहले आर्मी हेडक्वार्टर कह रही थी साहब उसका पता नहीं हमारे पास। आर्मी आप इसको जानते हैं, आर्मी सबसे ऑर्गेनाइज्ड संगठन है इस देश में, जो अपने एक एक आदमी का पता रखता है। उनका जो CDA है, जो कंट्रोलर डिफेंस अकाउंट्स है, वो अगर सेकेंड वर्ल्ड वॉर में भी कोई रिटायर हुआ होगा तो उसके भी पेंशन का वहाँ हिसाब किताब होगा, और ये पता होगा कि वो जिंदा है तो किस गांव में रह रहा है। अगर आर्मी हेडक्वार्टर ये बता रहा है कि साहब हमें पता ही नहीं मेजर पठानिया कौन है, उसका पूरा नाम बताइए, उसका पता बताइए, तो ये तो सीधा इसका मतलब है कि वो इंटरेस्टेड नहीं है उसे ढूंढने में। बहरहाल जैसा मुझे पब्लिक प्रोसिक्यूटर ने बताया कि इन्होंने ढूंढ ढाल के उसको तलाश भी लिया, उसके घर जाके समन भी सर्व कराए, उसके बाद वो नहीं हाजिर हुआ। तो क्या हमारी अदालतें इतनी हेल्पलेस हैं? कई IPS अफसरों को पॉलीग्राफी टेस्ट के लिए CID ने बुलाया, वो नहीं आए। तो क्या हमारी इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसियां और अदालतें इतनी हेल्पलेस हैं कि वो इसके बाद भी कुछ नहीं कर सकती? तो ये मैं सिर्फ ये इसलिए आप मेरा वक्त ख़त्म हो गया सिर्फ इसलिए कह रहा था कि इसमें सारे स्टेक होल्डर्स बराबर के दोषी हैं, और ये बहुत महत्वपूर्ण मसला इसलिए है कि हमारी पूरी फैब्रिक, हमारा जो पूरा सेकुलर फैब्रिक है वो खतरे में है अगर हमने तेजी के साथ कार्रवाई नहीं की और इन्हें सज़ा नहीं दिलाई। तो मैं जो लखनऊ का आपको वाकया सुना रहा था, मुझे लगता है कि उस तरह के बहुत सारे शहरों में जाने में मुझे उसी तरह का अनुभव हुआ। शुक्रिया।
इससे पहले कि अगले स्पीकर को बुलाऊं, अरीज जो यहाँ होंगे उनसे रिक्वेस्ट करूंगी कि हाशिमपुरा इंसाफ कमेटी जो वहाँ की, जो हाशिमपुरा में जो विक्टिम्स हैं और उनकी फैमिलीज जो हैं, उनकी एक कमेटी बनी है और उनका एक सेट ऑफ डिमांड्स है, वो मेमोरेंडम जो है उन्होंने तैयार किया है, अरीज उसको पढ़ देंगे। और सबसे रिक्वेस्ट है कि इसको हम लोग यहाँ पे अडॉप्ट करें एज अ रेजोल्यूशन आज की मीटिंग में।
सेवा में मुख्यमंत्री अखिलेश यादव, उत्तर प्रदेश, लखनऊ। शेख हाशिमपुरा हत्याकांड के पीड़ितों को इंसाफ की मांगों के संबंध में ज्ञापन। मान्यवर, हाशिमपुरा इंसाफ कमेटी हाशिमपुरा के उन सभी पीड़ित परिवारों की तरफ से जो बेकसूर लोगों को PSC ने 22/5/1987 में गोलियों से मार दिया था और जो 5 लोग इस हत्याकांड में जीवित बचे गए थे, वे ज्ञापन उन सभी लोगों की ओर से CM साहब को है। पहला, दिल्ली सेशन कोर्ट ने 21/3/2015 के फैसले राज्य बनाम सुरेंद्र पाल सिंह फैसले के खिलाफ उत्तर प्रदेश राज्य सरकार एक मजबूत अपील हाईकोर्ट में शीघ्र ही दर्ज करे। दूसरा, ज्ञान प्रकाश कमेटी की रिपोर्ट को 1 महीने के अंदर सार्वजनिक किया जाए। तीसरा, पीड़ित परिवार के लोगों की जो आर्थिक मदद मिली वह काफ़ी कम थी, जिसमें 7 लोगों को पैसा वापस चला गया और PSC के द्वारा किए गए हत्याकांड में जो 5 लोग बचे उनको अभी तक कोई आर्थिक मदद नहीं मिली है, इसलिए PSC के द्वारा मारे गए में से बच गए हत्या के पीड़ित परिवार तथा हत्याकांड से बचने वाले 5 लोगों को उचित मुआवजा दिया जाए, उनके बच्चों को उच्च शिक्षा तथा कार्य ट्रेनिंग के लिए विशेष योजना बनाई जाए तथा उन लोगों के पुनर्वास के लिए विशेष सरकारी योजना का प्रबंध शीघ्र ही किया जाए। चौथा, दिनांक 22/5/1987 को PSC द्वारा हाशिमपुरा के लोगों के हत्याकांड से जुड़ी पुलिस तथा CBI ID द्वारा की गई विवेचना पर संपूर्ण जांच कार्रवाई की जाए। बस
तो सब हाथ उठा करके पास करें तो ये रेजोल्यूशन यहाँ आज इस हाउस में पास हुआ है। अगले स्पीकर हैं अजय जी। Ajay ji is insisting that he won't speak for very long, but we would still like to.
No, in fact, I don't want to speak at all. Purushottam sir. So, I'm indeed thankful to organizers for inviting me to this conference.
My training as a reporter of an older generation only allows me to speak less, listen more. I have agreed to go against my grain as issue here requires me to speak. Nearly 3 decades after killings of innocents in Meerut, one morning the newspaper headline screams, "No one is guilty for Hashimpura." How does one react to this news? For younger generation, what is this case about? As Mr. B. N. Rai rightly puts it, this is the first case of custodial killing by the state. Perhaps after the state-sponsored killing in Second World War, this is once again reaffirmation of the state's right to kill its people at will. When Hashimpura was enacted, there was another massacre in Meerut known as Malyana. But in this case, conspiracy of silence exists. Those killed have become a mere statistics. As a society, we tend to believe that time is the best healer. As a state, besides honing the killer instinct, we have also developed a consummate skill in erasing the memories which are disturbing and unpleasant. Since I am in the midst of those who made a valiant effort not to let the state put these massacres into oblivion, I'm only making a tangential reference to these incidents. But let me recount another incident which is directly linked to these issues. In June 1991, 13 able-bodied Sikhs were taken off from a bus on border of Uttarakhand and UP. They were taken to 3 different locations in Pilibhit and executed. That was the time when Punjab terrorism was at its peak. Right from the beginning, we all knew that these murders were performed with the blessing of those in power. The similarity with Hashimpura was uncanny. The IPS officer who manned the control room in Meerut was involved in these killings too. On the basis of a media report, the Supreme Court took notice and ordered a CBI probe. But what happened after that? After so many years of probe, all officers above the rank of DSPs were exonerated. 58 policemen from SIs to constables were found guilty. Does this not defy logic? Can 58 policemen resort to these executions on their own? Can it be possible without connivance of top officials? But when it comes to investigation, India's premier investigative agency, the CBI, is no better than CBCID of UP. And judiciary seems too eager to be deceived by shoddy investigations. All officers involved in these killings of Sikh rose in rank and lived happily ever after. Perhaps Pilibhit killings would not have happened if the guilty of Meerut were dealt with according to law. But that is hardly the concern of the state. Erasing memory is easier than attempting to evolve a just and conciliatory institutional mechanism. Hashimpura is not the beginning and it will not be the end. I can go on narrating many such incidents which have been erased from our memory. The list is so long that it often evokes boredom. In 68 years since independence, Indian state has successfully made violence as its intrinsic feature. Is it not an irony for a nation that was so proud of making non-violence as its foundational principle? At a time when Gandhi's memory is lived through distortion, is a violence prone state a logical outcome? Do not we see society endorse violence when others are at the receiving end? I'm as keen to know the answers as all of you. I'm thankful to all of you. Thank you. Thank you very much.
Now I'd like to invite Advocate Radhika John to talk about
the case. I've come with all my files, at least some of them. I think most of you will be interested in knowing why the judgment turned out to be the judgment it was. Because I don't think there's clarity as to why the judge acquitted these 16 men. Originally 19, three of them died during trial. Why did the judge acquit these 16 men? And I think we need to understand that before we can go further. Now, in the judgment, the additional sessions judge, Sanjay Jindal, has categorized certain issues. One, the issue of the forcible abduction, putting into a PSC truck, taking them to two different spots, their brutal killings and throwing them into the canal. Based on the statements of five surviving eyewitnesses, Zulfikar Nasir, Mohammad Naeem, Mohammad Usman, Mujibur Rahman and Babudi. These five men were PW's 1, 2, 3, 4 and 11 in the trial. They have very, very bravely come to court and testified as to how the incident took place, how they were picked up. They were young boys of 16 or 17 at that time. How they were pushed into this vehicle in the middle of the night, how they were shot and then thrown into the river, how they escaped because the men who were shooting them believed that they were dead. When you read the testimony of these five victims, you get shivers up your spine. As a practicing lawyer who has practiced in courts for 28 years and criminal law is my forte, when I reread that evidence, because when they first came to court, they went through an initial preparation with me. But when I reread their evidence at the time of final arguments, I was again horrified. So what is being said here is that these stories must never be forgotten is absolutely right. Because when you read their testimony, you realize what the state has done to these innocent men and how they were treated. The judge has accepted their testimony in totality and has said that there is no doubt about the fact that the incident of abduction and brutal killing by men in uniform stands established. However, a prosecution must go further. When you prosecute 16 people for murder, it is the duty of investigating agencies and it is the duty of prosecuting agencies to provide corroborative material to establish that these men in the dock were actually the men who committed the crime. Whose responsibility was it to provide that corroborative material? It was the responsibility of the prosecuting agency and the investigating agency, the UP police, of whom Mr. Rai was a member at that time. I know that investigation was subsequently transferred from them within a very short period of time. But I also know from experience that the initial investigation, the initial seizures you make, the initial initial evidence you seize is the most critical evidence in a criminal trial. This is where the judge has said that the prosecution has miserably failed. Because although he believes the testimony of the five surviving eyewitnesses, those five men said, we cannot identify anybody. It was the middle of the night. These men were in uniform. They had helmets on their faces. We were asked to bend down. We were in fear. And we've never seen them before. We cannot identify them. The first failure of the investigating agency, and I don't know how these 19 men were picked up eventually. There must have been some reason why these 19 men were picked up. One would have imagined that the very first protocol of investigation is that you put the survivors through a test identification parade. It was not done. Whose fault was it? The UP police. it was possible that back in the day, in May 1987, they may have remembered somebody. But by the time they were able to testify in court, it was 2006 to 2009. There is no, it is humanly impossible for any one of us to remember or identify people we've never seen in our lives before, 20 years after the occurrence. So for me, it is important to place this judgment in context. I know for the longest time, including myself, we have used this judgment and we have battered the judiciary, and rightly so. I am one of those who has no sympathy for what the judiciary does in these cases. But I'm asking myself a question as an officer of the court. What is a judge supposed to do with this evidence? Ultimately, he has to acquit or convict. And if he convicts people for 302, he must have evidence to back him. Where was that evidence? And why was it missing? Now, Mr. Rai has spoken today, as well as in other forums, of the larger conspiracy. Who said that in court? Did anyone say that in court? In fact, I would like to read a particular page of the judgment. It's page 189 of the judgment, which was marked by my colleague Harsh today. So just give me permission. And the court is at pains to note this fact. Yeah. Now, it's a simple thing. It's not rocket science. 42 odd men put into a truck. The men don't know the name, the number of the truck that was URU1498. But they were people who went to, who saw a particular truck being washed. Someone should have said that this truck number was URU whatever. There was no one who said that. And the court says, so far as witnesses relating to inspection of the MNT section of the 41st Battalion are concerned, they have acted upon the information given by someone, and they only concluded on the basis of wet earth and reddish water present at the spot that the vehicle had been washed there. There is nothing on record to show that it was truck number URU1493, which was taken in the MNT section and washed there. It is not clear what that reddish substance seen at the spot by the witnesses. There is no seizure of that reddish substance, nor is there any chemical examination of the same to suggest that it was blood mixed with water due to the washing of the truck. So many senior officers have inspected the spot, but no concrete evidence has been collected by them or proved during trial. Now I'm asking myself this question. Who are we blaming here? Because one of the paramount and most important element of a criminal trial is investigation. So there was suppression of evidence. We all know when police officers investigate police officers, evidence will be suppressed. It's not a knowledge we've gained after Hashimpura. We know it all the time. Police officers investigating police officers will by and large suppress evidence. There is also the question of diligent investigation. So apart from the suppression, basic protocols of investigation were not carried out, and I'm making that statement with a sense of responsibility, having been frustrated through this trial, looking at the evidence that the prosecution brought. No seizure of the truck, no seizure of the bloody water. What do you expect the court to do? How does he connect these 19 men, firstly to the battalion in question, and then to the truck in question? And he's saying this horrific incident has taken place. There was indiscriminate firing that took place inside the truck as well. There must be some evidence. You allowed the truck to go. You allowed the weapons to be reused by the PAC. You allowed the weapons to remain with the PAC. By the time it was seized and sent to the CFSL said, hello, what are we supposed to say from this? It's been used subsequently. How on earth can a prosecution succeed if this is the quality of evidence? And there is culpable failure of the state, successive governments who rule Uttar Pradesh and the center, and I would say officers in uniform, whoever they were. people responsible for investigating this crime did not do so. Whether it was through negligence, whether it was through incompetence, or whether it was through deliberate suppression of material, it has not happened. There is no point recounting conspiracy theories after the incident. Many of these people came to court. Many of these people testified. What is the nature of their testimony? The investigation was transferred from our hands after 30 odd hours. But we didn't seize the vehicle. We didn't seize the bloody water. We didn't. We don't even name the truck in question. How do you build on that? So as someone who appeared for these victims through a long and lonely struggle, that's the other point I want to make. Once something like this happens, 28 years after the incident, suddenly the whole civil society wakes up. Suddenly you have television programs, and I've just been wondering why I've been giving so many interviews at late. Through this lonely struggle of 28 years, it was only the people of the men and women of Hashimpura who kept the flag flying. There was no one with them. They were poor and desperate in 87. They are poor and desperate today. And I think we must recognize that. There is no point in making a big civil liberties collaboration at the end of a struggle when you don't walk with them through the struggle. And we haven't done that. We haven't done that. And I say that with respect to the media. I say that with respect to members of the force. I say that with respect to ordinary members of civil society. These were an abandoned set of people from Hashimpura. We abandoned them in 87. We abandoned them later. And today we are shedding crocodile tears for them. And it will not work that way. No incident of this kind should ever go unpunished. But for it to go punished, we must be vigilant as a community. Lawyers, police officers, politicians, ordinary students and teachers, all of us are invested in it because this is our future. If the men and women of Hashimpura are crying today, it's a shame on us. It reflects on how poorly our system functions. And as a member of that system, I am more than happy to take responsibility for what has happened. There's been much talk about what the way forward. What is the way forward? Now, Vrinda and I were very, very clear. And we actually knew this would happen. Because what do you do with evidence as bad as this? So the question arises. So we move to the High Court, ask for an appeal. What is the magical thing that will happen? I have a response to that. Justice means different things to different people. Justice, sometimes and always in fact, is that the perpetrators must be punished. But if that has not happened, can we not expand the concept of justice? Cannot a superior court look at this evidence and say, all these people could have collected all these pieces of evidence on these days and they did not do it, and today fix accountability on them? Because unless you punish people in power, this will happen again and again and again. Cannot a superior court look at the horror and expose the horror of the incident to the... And to that extent, this judgment is very, very disappointing. Because what this judge has done is, he's looked at it very clinically. Jaise ki bhai hamare bahar pe nukkad mein ek chota sa incident ho gaya, jamia ke bahar mein do log thappad maar diya, is type ka incident. He didn't give it the importance an incident of this nature deserved. There was no mention of the wide-scale ramifications of an incident like this. And therefore, it was a disappointing judgment from that point of view. And while he kept on saying about proof beyond reasonable doubt, which is the correct interpretation of criminal law, I would also like to ask him a parallel question. I'd like to ask that question to the judiciary at large. Aise cases mein, aap proof beyond reasonable doubt, custodial incidents mein aap poochte hain, jab proof beyond reasonable doubt to kabhi milega hi nahi aapko. Police wala kisi police wale ke khilaaf evidence nahi laega. So, but aap insist karte hain ki proof beyond reasonable doubt honi chahiye. I represent many accused persons in trial in terror cases. Aapke yahan pe Bartla House ki tragedy hui thi 2005 mein, jo the bomb blast hua tha in Sarojini Nagar, where 5 Kashmiri men are in custody for 11 years on zero evidence. मैं वहां पे आप कॉम्प्रोमाइज कर लेते हो, कोई प्रूफ नहीं है, पर आप बेनिफिट ऑफ द डाउट प्रोसिक्यूशन को देते हो. बेनिफिट ऑफ द डाउट यहां पे आप अक्यूज को दोगे, उधर आप प्रोसिक्यूशन को दोगे. दोनों तरफ जो विक्टिम्स हैं वो मुसलमान होते हैं, एज एन अक्यूज और एज एज अ विक्टिम. सो यू शिफ्ट द स्टैंडर्ड्स अकॉर्डिंग टू वॉट इज सूटेबल. In a case like this, you insist on proof beyond reasonable doubt. I'm asking, why don't you insist on proof beyond reasonable doubt when innocent men are put in custody under the UAPA Act, under MACOCA, under POTA, and now that horrendous act which has come out of Gujarat? There, you cover for the prosecution. You say there's no need for proof. Kiya hoga hai. So what is this system that we are defending, where basic elements of the law are not upheld? So, I think I've taken a lot of your time. What I really want to say is that two things. One, we must never erase these things from our memory. Hashimpura must become a rallying point, not just for those men and women there, but for all other cases where civil liberty is violated. And we must always remember that it's not good enough to wake up 28 years later. It is important for us to walk the journey with victims of such crime. If you don't do that, this will happen again and again and again. Thank you.
Thank you very much, Rebecca. There's much to introspect and reflect about, not just about Hashimpura, about what we'll do next. Where do we go from here? It's always, when you talk about these cases, there's a sense of frustration that one feels all the time. But what do we do beyond being frustrated and beyond being depressed? These are some of the questions that we really need to think about. And I was the last speaker for the day today, Mr. Purushottam Agarwal. I hope he will elaborate on some of these issues. But I'd also like to say that we're all grateful to Rebecca and others who held the flag high on everybody's behalf and on our behalf. I think
many, many more people, and sometimes we don't ever name them.
And no, that's why I said Rebecca and all others.
Dosto, sachai to ye hai ki Rebecca ke bolne ke baad mujhe bolne ki zarurat hai. Aur असल में जो उन्होंने कहा वो केवल केस के फैक्ट्स नहीं, बल्कि जो इस केस की और इस केस के बहाने जो व्यापक समस्याएं हैं उनकी ओर उन्होंने ध्यान रखा. ये हमारे सिस्टम की इस खूबी को हम कई रूपों में देखते हैं. बात हाशिमपुर बातें की होती है या हाशिमपुर तो हम इस रूप में देखते हैं कि दलित होगा, मुसलमान होगा तो मार खाएगा, प्रोसिक्यूशन से भी खाएगा, उधर से भी खाएगा. लेकिन रेवेका ने अपनी बातचीत में एक और इसी चीज के एक और पहलू की तरफ एक इशारा किया कि अगर सजा होती भी, मान लीजिए जो भी एविडेंस था, सजा होती भी तो उन 16-17 पुलिस वालों को होगी जिनका सबसे बड़ा अफसर, जैसा राय साहब ने बताया, सब इंस्पेक्टर. किसी एसपी को सजा नहीं होती, किसी आईजी को सजा नहीं होती, किसी डीआईजी को सजा नहीं होती, किसी बड़े आईपीएस और आईएएस अफसर को सजा नहीं होती, क्योंकि जैसा उन्होंने कहा राय साहब ने कि उनकी कंसेंट या उनके एक्टिव अमेंडमेंट के बिना सब इंस्पेक्टर की तो ये हिम्मत ही नहीं हो सकती थी कि 70 या 50 लोगों को उठाए और उठा के गोली मार के कहीं फेंक देता उसके. उनको सजा कर ये आप देखेंगे, हर मामले में देखेंगे सिस्टम की ये बड़ी खरी खूबी है कि जो सबसे छोटा इंसान है, वो एक पुरानी कहानी मुझे याद आती है, उसमें होता है कि साहब वो सरकारी दफ्तर में खर्चा बहुत बढ़ गया है तो कुछ लोगों को कम किया जाना है. तो सेक्रेटरी साहब मंत्री जी से कहते हैं कि भाई मुझे को हटा दीजिए, मेरी बहुत तनख्वाही जाती है. तो मंत्री जी कहते हैं नहीं, आप तो इतने जरूरी हैं, आपको कैसे हटाया जा सकता है. तो फिर एडिशनल सेक्रेटरी कहते हैं, फिर अंततः मालूम पड़ता है कि उस दफ्तर में जो सबसे ज्यादा फिजूल खर्ची हो रही थी वो चपरासी की तनख्वाह पे हो रही थी, चपरासी को नौकरी से निकाल दिया. उसी का एक रूप हम इस केस में देख रहे हैं. और मैं रेवेका सचमुच आपको शुक्रिया करना चाहता हूँ, क्योंकि आपने इस बात की तरफ सही इशारा किया ये बहुत स्वाभाविक है, हम सबकी प्रक्रिया यही होती है। अखबार में मैंने पढ़ा तो मुझे भी बड़ा क्रोध आया कि छूट गए। सही कहा कि जज ये कह रहा है कि हाँ ये अकाउंट सही है, ये पांच जो सर्वाइवर है सच बोल रहे हैं, लेकिन इनके आधार पर मैं 17 या 18 लोगों को 302 का कन्विक्ट या गिल्टी नहीं करूं। उसके लिए जो एविडेंस चाहिए, लीगली सस्टेनेबल एविडेंस चाहिए, वो जुटाना जिन लोगों का काम था, मिसाल के तौर पर उस ट्रक को सीज करना, मिसाल के तौर पर उस खून के या पानी के दावों को किसी तरह केमिकल एनालाइज करना, वो जिन्हें करना चाहिए था या जिन्हें ये सब करने के हुक्म देने चाहिए थे, उन्होंने नहीं किए। और मजे की बात यह है कि चाहे आपका लीगल डिस्कोर्स हो, चाहे आपका पॉलिटिकल डिस्कोर्स हो, चाहे टेलीविजन पर चर्चाएं हो, वो जो अनाम लोग हैं उनका कहीं आपको ऐसा पता नहीं। मनीषा की किताब का स्वीर से मुझे याद आता है, मैंने अभी अभी ताजा ताजा पढ़ी है, बहुत दिनों से आई हुई किताब थी, मेरी कमजोरी है कि मैंने अभी पढ़ी। तो सचमुच हम कातपलन हैं, सचमुच हम कातपाती हैं कि जो असली अपराधी है वो आपके साथ बैठ करके गप करता है, जो असली अपराधी है वो आपके साथ पार्टी में शामिल है, और कोई चपरासी कोई पुलिस वाला वो सजा नहीं। सचमुच आभारी हूं रेखा का कि उनके प्रेजेंटेशन में ये बात निकल के आई। और जो आगे काम करने की बात है उसमें एक तो यही है कि ये मांग और पुरजोर ढंग से की जाए कि जिन्होंने हत्याएं की या जिन्होंने बंदूकें चलाई केवल उनको नहीं बल्कि उनको चिन्हित करने की, उनको आइडेंटिफाई करने की जरूरत है जिन्होंने प्राइमरी जो आदेश दिए या उनको एनकरेजमेंट दिया और फिर जानबूझकर या बेवकूफी में या लापरवाही में इन्वेस्टिगेशन को पहुंचा। मेरी निगाह में असली अपराधी ठीक उस तरह, ये दूसरा मुद्दा है मेरी बात का, ठीक उस तरह जैसे किसी भी कम्युनल वायलेंस जो असल में कत्ल करते हैं उनसे बड़ा अपराधी मैं उन्हें मानता हूं जो उस कत्ल को कंडोन या रेस्टलाइज करते। जिन लोगों ने सन 1984 में इस दिल्ली नगर में 1500-2500 नागरिकों को जिंदा फूंक दिया, जला दिया, मार डाला, वो अपराधी थे, और उनमें भी आप जानते हैं आज तक किसी को सजा वजा मिली नहीं और ना मिलेगी, मुझे पक्का यकीन है नहीं। मेरी निगाह में सबसे बड़े अपराधी वो थे जिन्होंने कहा कि भाई ये तो ठीक है, नहीं होना चाहिए था, लेकिन अब क्या किया जाए, ये लोग भी तो बदमाशी बहुत कर रहे थे, इनको सब सिखाना चाहिए। अजय ने जो पढ़ा अभी नोट अपना, अजय ने गवर्नेंस नाउ के नए अंक में लिखा है इस पर छोटा सा पीस, और उन्होंने उसमें बताया है कि जो असल में मास्टर माइंड था इसका, उसने सोचा कि यार बहुत हो गया, ये दंगा वंगा बहुत हो रहा है, इनको सबक सिखाया और ऐसा करते हैं, उसके बाद 10-5 साल जो है इलाके में कर रहे हैं। असली अपराधी तो वो, उस तक आपकी पहुंच नहीं हो सकती, तो फिर इन कांस्टेबलों और सब इंस्पेक्टरों को डटका भी दें आप तो कोई खास फर्क नहीं पड़ना है, फिर से पीलीभीत होगा, फिर से ऐसी घटना। जो असल में ताकतवर लोग, और ताकत इस मुल्क के वर्तमान निजाम में ताकत हमारे और आपके जैसे लोग, समाज का जो रूलिंग एलीट है जिसका हिस्सा किसी ना किसी रूप में हम सब लोग, जब तक जिम्मेवारी वहां तक नहीं पहुंचेगी और वहां लोगों को आइडेंटिफाई नहीं किया जाएगा बात में। तीसरी बात मैं कहना चाहता हूं मित्रों, यहां थोड़ा सा मुझे व्यक्तिगत संस्मरण में जाने की अनुमति चाहिए। मैं सन 77 में दिल्ली आ गया था JNU से MA करने के लिए, और सन 84 में मैंने पहली बार देखा कि भीड़ का जस्टिस क्या होता है, और सन 84 में मैंने पहली बार देखा कि अगर किसी आदमी के पीछे लोग ऐसे पड़ जाएं जैसे कि किसी के पीछे जानवर पड़ जाते हैं, हिंसक जानवर, तो उस आदमी जैसा होना क्या होता है। मैंने देखा अपने मोहल्ले में लोगों को इस हालत, थोड़ा बहुत जो उसके बाद हुआ रिलीफ वगैरह का काम उसमें थोड़ा बहुत हिस्सा लिया, लेकिन जाते हैं। सन 87 में ये सब घटनाएं जब हो रही थी तो आपको याद होगा कि दिल्ली में भी वारदात हुई थी, पुरानी दिल्ली के इलाके में सांप्रदायिक दंगे हुए थे, कुछ लोग मारे गए थे, घायल हुए थे। तो दिल्ली यूनिवर्सिटी के कुछ स्टूडेंट्स के साथ, मैं उस समय दिल्ली यूनिवर्सिटी के कॉलेज में पढ़ाता था, वहाँ हम लोग गए, जो तरीका था और अभी भी है कि जाकर के रिपोर्ट तैयार करेंगे की छपी वपी बात। उसके बाद उसी सिलसिले में मैं गंग नहर थी ना, ऐसा जहाँ लाश में फेंकी गई थी, वहाँ गंग नहर भी गया, वहाँ जाके जो हालत अभी बताई गई उसका थोड़ा बहुत अंदाज मुझे भी हुआ। और तब मैंने ये रियलाइज किया पुलिस प्रशासन और पूरे का पूरा जो माहौल है उसमें बायस कितने कॉमन सेंसिकल है। चांदनी महल का उस समय जो SHO था सन 87 मैंने अपनी किताब में लिखाई थी, उसका बजरंग दल ने नागरिक अभिनंदन किया। बजरंग दल किस तरह का संगठन है आप जानते हैं। मैं व्यक्तिगत रूप से ये मानता हूं कि अगर आप SHO हैं तो आपका नागरिक अभिनंदन को स्टूडेंट यूनियन करे इसकी भी इजाजत आपको नहीं मिलनी चाहिए। मैं इस मामले में बहुत क्लियर फंडे वाला हूं। आपको वर्दी जब दी जाती है, आपको जब दुनिया भर की सुरक्षा और सुविधाएं दी जाती हैं, तो स्टेट आपसे बदले में एनोनिमिटी है। मैं ऐसे पुलिस अफसरों और ऐसे IAS अफसरों को पसंद नहीं करता जो ये सब जिनके अभिनंदन हो और जिनका ये सब अपनी ड्यूटी के प्रति। आप लिखते हैं, आप लेखक हैं, कलाकार हैं, पेंटर हैं, वो अलग बात है, लेकिन बतौर SHO के आपका अभिनंदन किया जा रहा है बजरंग दल का, किसी को फूल देते हैं। उन SHO साहब से बात करने का सौभाग्य मुझे भी हासिल हुआ। मैंने उनसे पूछा कि कितने लोगों को आपने पकड़ के बंद किया है इस सिलसिले में, उन्होंने कहा 329। मैंने जब कम्युनिटी वाइज खबर उनसे मांगी तो उसमें से 320 मुसलमान थे और 9 हैं। तो मैंने उनसे कहा कि ये क्या मामला है, बोले आप जानते नहीं ये ससुरे होते ही बदमाश थे। हाँ ये तो आप ठीक कह रहे हैं, इस पर क्या बहस की जा सकती है, जब आप जो कह रहे हैं वो बिल्कुल सही है। इसी का एक दूसरा पहलू देखिए, कश्मीरी पंडितों का जब मसला चल रहा था और वो दिल्ली में कुछ कैंपों में आए हुए थे, तो मेरे मित्र स्वर्गीय फारूक शेख, अभिनेता और बहुत सामाजिक चेतना वाले व्यक्ति थे, वो उनसे मिलने गए और चूंकि वो फिल्म स्टार थे तो उनके जाने की खबर वगैरह कुछ अखबारों में छप गई। मैं उस समय JNU में था, एक हॉस्टल का वार्डन था, तो जो हमारे फेलो वार्डन थे उन्होंने मुझसे कहा कि देखा ये फारूक कश्मीरी है इसलिए इसको कश्मीरियों का दर्द। तो मैंने उनसे निवेदन किया कि भाई साहब फारूक शेख कश्मीरी नहीं है, गुजराती है। मैं फारूक शेख को बहुत अच्छी तरह जानता हूँ और जानता था बुजुर्ग बेचारे। मैं यकीन मानिए दोस्तों, मैं अपने उन वार्डन मित्र को यकीन नहीं दिला पाया। मुझे चिड़के ये कहना पड़ा, वो मोबाइल का जमाना नहीं था, मुझे चिड़के ये कहना पड़ा कि मैं फारूक को फोन लगाता हूँ, उनसे आप कश्मीरी में बात कर लीजिए, अगर वो कश्मीरी में आपकी बात का जवाब दे दो तो मैं मान। तो गुजराती है भाई, नहीं 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 वो कश्मीरी नहीं होता तो जाते ही। वो भी एक महत्वपूर्ण चीज की ओर इशारा, जैसे चांदनी महल के SHO साहब एक चीज की ओर इशारा कर रहे थे, हमारे ये वार्डन साहब फारूक के कश्मीरी होने का इजहार करके भी एक जरूरी चीज की ओर इशारा। और वो जरूरी चीज ये है कि अगर मसला हाशिमपुरा का है तो मीटिंग जामिया में होगी, मसला अगर हाशिमपुरा का ना हो तो मीटिंग कहीं होगी, वो जरूरी चीज। मसला अगर सन 84 में सिखों के कत्लेआम का है तो सिख इंस्टीट्यूशंस बंद रहेंगे, दूसरे धर्मों या संस्कृतियों के या सेकुलर इंस्टीट्यूशंस बंद नहीं है। मसला ये मुझे जानकारी नहीं है, अगर मैं गलत हूं तो मैं बिल्कुल अपने रेक्टिफाई होने के लिए तैयार हूं। सन 84 के उस भयानक नरसंहार के प्रति शोक और विरोध के रूप में केवल ईसाइयों ने अपना इंस्टीट्यूशन विद्या ज्योति, जो जैसुइट ईसाइयों का इंस्टीट्यूशन है, थियोलॉजी का इंस्टीट्यूशन है, वो उन्होंने एक दिन के लिए बंद किया था। शोक सभा की थी, मैं इसलिए जानता हूं कि उस शोक सभा में जाके बोलने की तो कोई बात ही नहीं थी, सर्वधर्म प्रार्थना जैसी हुई थी और हम सब लोगों ने आंसू बहाए थे चुपचाप, और किसी संस्था में हुआ हो मुझे जानता है। सन 84 के उस दंगे में ईसाई नहीं हुआ। हमने धीरे धीरे एक ऐसी स्थिति उत्पन्न कर दी है मित्रों, हम आइडिया ऑफ इंडिया की बात करते हैं, पिछले 2-3 वर्षों में, खास करके पिछले साल भर में आइडिया ऑफ इंडिया अंडर थ्रेट, इसकी बहुत बात होती है, ये सब चर्चाएं होती हैं, होनी ही चाहिए। द पॉइंट इज दैट आइडिया ऑफ इंडिया इज फंडामेंटली डिपेंडेंट ऑन द आइडिया ऑफ सिटीजन्स। अगर मेरी तकलीफ, अगर मुझे हाशिमपुरा की तकलीफ समझने के लिए मेरा मुसलमान होना जरूरी हो, लक्ष्मणपुर बातें की तकलीफ समझने के लिए मेरा दलित होना जरूरी हो, तो देन देयर इज अ सीरियस क्राइसिस ऑफ सिटीजनशिप इन दिस कंट्री, और यह हरेक की तरफ से कहा जा सकता है। आपको अगर केवल हाशिमपुरा का दर्द होता है, 84 का नहीं होता, तो देयर इज अ प्रॉब्लम माय फ्रेंड्स एंड वी मस्ट फेस इट। अगर गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी को केवल 84 का दर्द होता है और हाशिमपुरा का नहीं होता, देयर इज अ वेरी वेरी सीरियस प्रॉब्लम। सो व्हाट इज अंडर थ्रेट इज द आइडिया ऑफ सेक्युलर, द आइडिया ऑफ सेक्युलर डेमोक्रेटिक पॉलिटी। सेकुलर डेमोक्रेटिक पॉलिटी तभी सेकुलर डेमोक्रेटिक बनी रह सकती है जबकि आप दुनिया भर के आपके मतभेद हो सकते हैं, झगड़े झंझट बैठ मोबाइल से हो सकते हैं, लेकिन दो चीज़ों पर आप एकदम स्पष्ट हों, दो चीज़ों पर आप एकदम अनकॉम्प्रोमाइजिंग हों, एक आइडिया ऑफ सिटीजनशिप, दूसरा रूल ऑफ लॉ। हमारे मित्र दिलीप सिंह कोई बात मजाक में कहते हैं कि यार इस मुल्क में बड़ा झगड़ा होता है सिविल लॉ के, यूनिफॉर्म सिविल कोड होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, दिलीप इस बात को मजाक में क्या कहिए, दर्द भरे मजाक में कहते हैं कि यार ये बाद में निपटा लेना, पहले क्रिमिनल लॉ तो यूनिफॉर्मली लागू करो। आप कल्पना कीजिए जरा, अगर कोई आदमी किसी को, मान लीजिए ये घटना जो है आशमपुरा वाली, इसको थोड़ा सा रिकंस्ट्रक्ट करें, मान लीजिए कि एक सब इंस्पेक्टर ने अपनी सर्विस रिवॉल्वर से निजी झगड़े में, निजी गुस्से में किसी को गोली मारी, वो सब इंस्पेक्टर सजा पाए या ना पाए लेकिन गालियां सबकी पाए, सब पहले के बहुत योग्य आदमी है, बदतमीज आदमी है, सर्विस रिवॉल्वर का दुरुपयोग करते, उसने निजी झंझट से उठा। लेकिन अगर वही सब इंस्पेक्टर अफसरों के आदेश पर या जैसे भी 15-17 भारतीय नागरिकों को गोली मार देता है जो कि गलत धर्म है, तो क्रिमिनल लॉ क्या करता है? हम इस मुल्क में क्रिमिनल लॉ लागू नहीं करते, यानी स्थिति यह है, वही वाली स्थिति के साथ दिल्ली में 2000 लोग मर गए, मरे जरूर मरे, क्योंकि तो मरे किसने मारे भगवान, आसमपुरा में इतने लोग मर गए किसने मारे भगवान, लक्ष्मणपुर माथे में इतने लोग मर गए किसने मारे भगवान, गुजरात में इतने लोग मर गए किसने मारे भगवान। और ये तभी मुमकिन है, मैं आपसे दोस्तों मैंने जैसा कहा कि कुछ बोलने जैसी चीज है नहीं, वो सब चीजें मुझे याद आती हैं। मैंने 1987 में अपनी एक डायरी एंट्री में लिखा था, दिल्ली और मेरठ और मलियाना ये सब घूम करके और वहाँ जिस तरह लोग बात कर रहे थे और जो सेंस ऑफ फ्रस्ट्रेशन था, जो 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 सेंस ऑफ हेल्पलेसनेस था, मतलब मैं कभी कभी सोचता हूँ एक बहुसंख्यक समुदाय से ताल्लुक रखने के नाते हो सकता है कि कभी कोई मुस्लिम भीड़ मुझ पर हमला कर दे, लेकिन या कोई ऐसी भीड़, लेकिन मुझे शायद कहीं ना कहीं मन में ये मेरे भरोसा है कि शायद पुलिस की गोली से मैं इसलिए नहीं मारा जाऊंगा कि मेरा नाम पुरुषोत्तम है, लेकिन कुछ लोग हैं जिन्हें ये भरोसा है कि वो पुलिस की गोली से सिर्फ इसलिए मारे जा सकते हैं कि उनका नाम फलां खान या फलां। 1987 में जो सबसे डरावना अनुभव था मेरे लिए, मैं उस बुजुर्ग को कभी नहीं भूल सकता जो पिछले 4-5 दिन से इन अ स्टेट ऑफ शॉक था, क्योंकि उसने बेमतलब के बिना किसी कसूर के अपने घर के बच्चों को पिटते और अपने घर की बच्चियों को बेच जाते। जब मैं उनसे मिला तो बड़े मियां शॉक में, तो उनसे आवाज और उस दिन मैंने अपनी डायरी में एक जुमला लिखा था कि ये जो मुसलमान है ये झूठ नहीं बोलता, क्योंकि एक सेंस तो होता है आदमी को कि आप कब नाटक कर रहे हैं, कब ये जता रहे हैं कि साहब हम पर अत्याचार हुआ है और कब असलियत बोल रहे हैं। मैंने लिखा था कि ये मुसलमान झूठ नहीं बोलता, और अगर झूठ बोल रहे हैं तो इन्हें एक्टिंग का अवसर देना चाहिए, अगर सचमुच इतना शानदार झूठ ये बोलता तो इन्हें एक्टिंग का अवसर देना चाहिए। 1987 से आज देखते देखते दोस्तों कितने वर्ष हो जाते, लगभग 30 बरस हो जाते, पूरी एक नई पीढ़ी आ गई। अजय ने जैसा अपने लेख में लिखा है कि हाशिमपुरा ओ व्हाट इज दैट, मैं ये मानता हूं, यह आखिरी पॉइंट है मेरा, किसी भी समाज के लिए किसी भी व्यक्ति के स्मृति मेमोरी एक मॉरल रेस्पॉन्सिबिलिटी, कुछ मेमोरी जैसी होती है जो अरेंज की जाए, कुछ मेमोरी जैसी होनी चाहिए जो बनाए रखी जानी चाहिए, वो मेमोरीज जिनसे खाम खामे झगड़े और झंझट खड़े होते हैं, जिनसे इनजस्टिस को बढ़ावा मिलता हो वो रेज की जाए, जिन मेमोरीज से समाज को ज्यादा जस्ट, ज्यादा ह्यूमन, ज्यादा सेंसिटिव होने में मदद मिलती है उनको बनाए रखना। और इसलिए मैं कहता हूं, आपसे अर्ज कर रहा हूं कि मेमोरी इज अ मॉरल। आज 30 बरस में बहुत मारते की बात विवेका ने कही कि जब जजमेंट आ गया तो हम सब बड़े बेचैन हैं, मीडिया में हंगामा हो रहा है, एकेडमिक्स, तो 30 बरस क्या हो? मैं उस वक्त 30 बरस का था लगभग, आज मैं 60 साल का हो गया। 19 अभियुक्तों में से 3 मर रहे हैं, जो लड़के 15-15 बरस के रहे होंगे वो आज 50 साल के हो चुके हैं। और काइंड ऑफ सिस्टम भी है, किस तरह के सिस्टम में हमारी नेशनल इंटरेस्ट पैदा, और किस तरह हम बहुत सारी चीज़ों को इंटरनलाइज किए बैठे हैं कि वो एक पुलिस वाले को, एक पुलिस मैन को, एक हवलदार को बर्खास्त कर देंगे या सजा कर देंगे तो हो गया, बाकी जो बड़े अफसर हैं वो बहुत ही इलस्ट्रियस कैरियर और सम्मान के साथ रिटायर होंगे, हो सकता है उनमें से एक आपको प्रेसिडेंट पुलिस मेडल भी मिल जाए बहादुरी के लिए और बढ़िया ढंग से अपनी ड्यूटी करने के लिए। देयर इज समथिंग सीरियसली रॉन्ग, और उस रॉड से हम मुकाबला तभी कर सकते हैं जब हम इस मामले में साफ रहे कि कुछ चीजें एक सेंस में कुछ चीजें यूनिवर्सल, सर्टेन वैल्यूज आर टू बी एक्सेप्टेड यूनिवर्सल। ये नहीं हो सकता कि बात आपके मुतल्लिक है तो जाए या मेरे मुतल्लिक है तो ना जाए, ये नहीं हो सकता। सिटीजनशिप एक ऐसा ही वैल्यू, रूल ऑफ लॉ एक ऐसा ही वैल्यू, और वो चाहे किसी भी स्थिति में हो, किसी भी हालत में हो, अनलेस वी आर क्लियर इन अवर पर्सपेक्टिव, इन अवर फिलोसॉफिकल पर्सपेक्टिव दैट वी हैव टू एडियर टू सर्टेन यूनिवर्सल नोशंस ऑफ सिटीजनशिप एंड टू द आइडिया ऑफ सेकुलर डेमोक्रेटिक क्वालिटी इन दिस कंट्री, वी कैन नॉट टेक एनी फर्क फॉर रेस्ट एश्योर। आई माइट बी साउंडिंग लाइक अ प्रॉफिट ऑफ डूम, बट रेस्ट एश्योर इफ यू आर नॉट क्लियर ऑन दीज टू फंडामेंटल पॉइंट्स, नो एक्सटर्नल कैन बी टेक। और इसलिए जहां तक इस मसले का इस खास केस का सवाल है, मेरा सुझाव वही है जो रेवेका की बात से निकलता है कि इंसिस्ट इस बात पर किया जाए कि जो असली गुनहगार पुलिस वाले जो थे, सिपाही और थानेदार या सब इंस्पेक्टर, उनको गोली चला रहे थे, लेकिन वो गोलियां चलाने का आइडिया जहां से आया और जिस तरह एग्जीक्यूट किया गया और जिस तरह उन लोगों को बचाया गया, अगर सचमुच उनको आप सजा छोड़िए, उनको अगर आप आइडेंटिफाई भी कर सकें, उनको अगर एक्सपोज भी कर सकें, तो आगे इन चीजों के ना होने की, इस खास मामले में लोगों को सजा मिलने की और आगे ऐसी चीजें रिपीट ना हो, इसकी थोड़ी बहुत संभावना बनती है। और अदरवाइज दोस्तों ये होता रहेगा, बुरा मत मानिएगा, हम बार बार होते रहेंगे, जिन्हें जो करना है वो करते रहेंगे और स्थिति वही होगी और लगातार वही होती जा रही है कि भैया आवो समिल रोवो भाई, भारत दुर्दशा देगी, यही पिछले 30 वर्ष से देख रहे हैं और डर ये लगता है कि बाकी के जो 10-12 वर्ष बचे हैं उनमें भी यही देखें। शुक्रिया।